جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا ارزقنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور ہمارا جو نصاب کی کتاب ہے وہ عارف القرآن کی جلد نمبر 3 ہے. اس میں تو جو آیات تلاوت کی گئیں، یہ آیات نمبر 72-73، یہ دو آیات ہیں، 72 اور 73. اس سے پیچھے کی جو آیات تھیں 69 سے لے کر کے 71 تک، تو وہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. ظاہر ہے جس کو پیچھے کا اگر ریوائز کرنا ہو تو اس کے لیے ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ حکم چل رہے تھے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دیں. ٹھیک ہے، اسلم تسلم، کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو اور سلامتی میں آ جاؤ. اسی سے یہ لفظ ہے نسلمہ، کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں. تو یہ حکم کیا گیا تھا کہ بھی ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ رب العزت کے. اور آگے مزید کیا حکم ہے، یا اس کی تفصیل کیا ہے، کہ ہم نماز قائم کریں. تو یہ حکم ہوا کہ نماز قائم کرو. وَاتَّقُوهُ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اس کا. تقو ہو جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پوائنٹ کر رہی ہے یہ ضمیر، یہ پروناؤن. تو کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے. اچھا، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جائے گا، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر کہتے ہیں جمع کیے جانے کو، تو تحشرون، تم سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وہی ہے یعنی اللہ ہی کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ ہی کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو، یا جس نے، اور وہی ہے جس نے خلق السماواتی، آسمانوں کو تخلیق کیا، والارض، اور زمین کو تخلیق کیا، بالحق، ٹھیک طور پر، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا. اس کی تخلیق کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی کجی نہیں رہ گئی، کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی، بلکہ اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یعنی جیسا وہ چاہتا تھا، جیسا اس نے پلان کیا تھا، بالکل ویسا ہی اس نے تخلیق کیا. ایسا نہیں ہوا کہ پلان میں تو ایسا کرنا تھا، لیکن جب پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آئی تو نعوذ باللہ ایسا نہ کر سکا. نہیں، جیسا چاہا ویسا تخلیق کیا. اب کوئی دوسرا کہے کہ یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا، تو بھائی وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی چاہت ہے، تو آپ کی چاہت کے اوپر تو اس نے نہیں کام کرنا ہے نا، اس نے تو اپنی چاہت کے اوپر کام کرنا ہے. تو جیسا اس نے چاہا ویسا اس نے کر لیا، یہی بڑائی ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کی خواہشات کو پورا کرتے پھریں. है, ये तो बड़ा ही नहीं होती कि दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करते फिरें। उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। वयौमा यकूलु कुन फयकून, और जिस दिन, यौम का लफ्ज जो होता है तर्जुमा तो इसका दिन से हो किया जाता है, लेकिन जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये बता रहा होता है कि इस दिन में क्या होगा, ठीक है, यानी ये मुजाफ हो जाता है यौमा, और बाकी सारा का सारा जुमला जो है उसका मुजाफ इलैही हो जाता है। जिसको मुदाफ मुदाफ इलेही की कॉन्सेप्ट का पता है उसको ये बात समझ में आ गई होगी, बाकी जो है तर्जुमा बस सुन लें कि यौमा, और जिस दिन यकूलु कुन फयकून, जिस दिन क्या होगा कि वो कहेगा हो जा तो वो हो जाएगा, बस वो हो जाएगा, ठीक है। कयामत के दिन की बात हो रही है, आगे तफसीर के अंदर हम इसको मजीद पढ़ेंगे। तो कयामत के दिन वो फरमाएंगे हो जा, बस वो हो जाएगा। कौलुहुल हक, उसकी बात भी सच्ची है, ठीक है, जैसे उसका अमल सच्चा है वैसे ही उसका कहना भी सच्चा है, ठीक है, यानी जैसा होता है वो वैसा ही कहता है, और जैसा वो कहता है वैसा ही होता है, ठीक है, उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। तो कौलुहुल हक, उसका कौल भी सच है। वलहुल मुल्क, और उसी के लिए है सल्तनत, बादशाहत, मुल्क, ठीक है, यानी जितना भी मुल्क है वो उसी के लिए, उसी का हुक्म उस मुल्क में चलता है। यौम युनफखु फिस्सूरी, फिर उसके बाद वही बात कि जिस दिन युनफखु फिस्सूरी, सूर फूंका जाएगा, सूर फूंका जाएगा, तो वलहुल मुल्क, उसी का, उसी की बादशाहत होगी जिस दिन सूर फूंका जाएगा। आलिमुल गैब, वो गैब का इल्म रखने वाला है, गैब को जानने वाला है। वश्शहादा, और उन बातों को भी जो के जाहिर हैं, यानी जो छुपी हुई बातें हैं जिनको गैब कहते हैं, वो उनका भी इल्म रखने वाला है। वश्शहादा, और जो बातें खुली हुई हैं जिनका मुशाहिदा किया जा सकता है उनका भी वो इल्म रखने वाला है। तो दो ही किस्म की चीजें हो सकती हैं, या तो जाहिरी चीजें या छुपी हुई चीजें, तो दोनों किस्म की चीजों का इल्म वो रखने वाला है। वहुवल हकीम अल खबीर, और वो हिकमत वाला है और वही जानने वाला है, ठीक है, मुकम्मल हिकमत वाला। अल हकीम, हर किस्म की हिकमत उसी के लिए है, और हर किस्म की खबर उसी के लिए है, यानी उसके पास है। तो ये हो गया तर्जुमा इन आयात के मजमे का, आयात के ग्रुप का, और अब इसके बाद फिर इनके फिर खुलासे तफसीर हम पढ़ते हैं। तो खुलासे तफसीर हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयान कुरान तफसीर से हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे नकल फरमाई है। तो उसमें हजरत फरमाते हैं, यानी मुफ्ती, यानी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि, और ए मुखातब, जब तू उन लोगों को देखे, आयत क्या थी, वइजा रअयतल्लज़ीना यखूदून फी आयातिना फअरिद अन्हुम हत्ता यखूदू, ये आपके सामने इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर खुली हुई भी होगी, 1 मिनट। स्क्रीन पे डिस्प्ले है ना ये, हाँ, तो साथ आप आयत भी पढ़ सकती हैं और जो है वो लेक्चर भी सुन सकती हैं, ये उन्होंने आसानी फरमा दी है। तो ए मुखातब, यानी जिससे बात की जा रही है, मुखातब कौन है, नबी अलैहिस्सलाम है और आप के वास्ते से हम लोग हैं, ईमान वाले हैं जो आप को अल्लाह का रसूल समझते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ए मुखातब, जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयात, और आयात का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला के अहकाम, ठीक है, आयात के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, एक अल्लाह ताला के अहकाम और दूसरी अल्लाह ताला की दूसरी निशानियां, ठीक है, या अल्लाह ताला की बातें, ये सब का सब, ये सब के सब आयात के अंदर शामिल हैं। अहकामात भी आयात का हिस्सा है, तो इसी वजह से फरमा दिया यहाँ पर कि जो हमारी आयात और अहकाम में ऐब जोई कर रही है, किसी के जहन में ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि आयात के अंदर अहकाम नहीं शामिल है, अहकामात कोई अलग चीज है और निशानियां कोई अलग चीज है। ठीक है, तो कुरान मजीद में तो आयात होती हैं, तो अहकामात तो यानी अहकामात जो है वो निशानियां तो नहीं है ना। जब जब हम उर्दू जुबान में भी ये लफ्ज सुनते हैं निशानियां, तो निशानियां तो फिर वो चीजें होती है ना जो कि किसी की तरफ पॉइंट करती हों, किसी के अंदर यानी किसी की निशानी उनके अंदर मौजूद हो। अहकाम जो है ये तो उसका जो हुक्म होता है वो होते हैं, तो किसी के जहन में ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि आयात के अंदर अहकाम शामिल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक आम बंदे को भी, जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म हो, वो जानता है कि कुरान मजीद के अंदर अहकामात भी शामिल हैं और उन्हीं आयात के दरमियान ही मौजूद वो अहकामात। ठीक है, तो उसने इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ब्रैकेट्स के अंदर तफसीरन और अहकाम भी लिख दिया। ठीक है, अच्छा, तो उन लोगों को देखे जो हमारी आयात और अहकाम में ऐब जोई कर रहे हैं, यखूदून ऐब जोई कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास बैठने से किनारा कश हो जा। ठीक है, आरिद अनहुम, किनारा कश हो जा, उनसे एराज कर ले, यहां तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, किसी और बात में लग जाएं। खादा यखूदू का मतलब आगे भी हम पढ़ेंगे मारफो मसाइल के अंदर, कि किसी और किसी भी चीज के अंदर गोता लगा लेना, किसी चीज के अंदर डूब जाना या किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, तो जब वो इस बुरी चीज को छोड़ करके किसी और चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ठीक है, और अगर तुझको शैतान भुला दे, व इम्मा युनसियन्नक शैतानु, अगर तुझको शैतान भुला दे यानी ऐसी मजलिस में बैठने की ममानियात याद ना रहे, ठीक है, तो जब याद आए, याद आने के बाद फिर ऐसे जालिमों के पास मत बैठ। वला तक़ुद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिल ज़ालिमीन, तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिमों के पास मत बैठ, बल्कि फौरन उठ खड़ा हो। ठीक है, और अगर कोई वाकई दुनियावी या दीनी जरूरत ऐसी मजलिस में जाने की हो, यह हजरत तफसीरन ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो तफसीर होती है, तो अगर कोई वाकई दुनियावी या दीनी जरूरत ऐसी मजलिस में जाने की हो, तो उसका हुक्म यह है कि जो लोग ममनुआत शरईया से जिनमें बिला जरूरत ऐसी मजालिस में जाना भी दाखिल है एहतियात रखते हैं, उन पर इन ताइनीन व मुकज्जिबीन की बाजपुरस और गुनाह तान का कोई असर नहीं पहुंचेगा, यानी बजरूरत वहां जाने वाले गुनाहगार नहीं होंगे। जैसे बाजार में कोई जरूरतन जाता है, ठीक है, कि भाई वहां पे जो जरूरत की अशियां हैं उनको खरीदना है या अपना कारोबार करना है, इस वजह से बाजार में जाना है, तो अब अगर बाजार के अंदर ऐसे लोग बैठे इस किस्म की बातें कर रहे हो, अल्लाह के आयात के अंदर यानी एतराज वगैरह कर रहे हो, तो उनके ऐसे एतराज का ऐसे शख्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा जो कि फकत अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन वो अल्लाह ताला के इस हुक्म से वाकिफ है और इस चीज से अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन मजबूरन जरूरतन उसको ऐसी मजलिस में जाना पड़ता है, ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, तो उसके ऊपर फिर गुनाह नहीं होगा। ठीक है, जरूरतन, बिला जरूरत जाएगा तो फिर उसके ऊपर उसका असर होगा, अगर बिला जरूरत नहीं जाएगा तो फिर असर नहीं, यानी बजरूरत जाएगा तो फिर इसका असर नहीं होगा। अच्छा, व लेकिन उनके जिम्मे बशर्ते कुदरत नसीहत कर देना है, शायद वो ताने देने वाले भी इन खराफात से एहतियात करने लगे। उनके जिम्मे यानी कोई ऐसा शख्स जो कि अल्लाह ताला की इस ममानियत से वाकिफ हो और अपने आप को बचाना चाहता हो, ठीक है, लेकिन जरूरतन उसको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा हो, ठीक है, जरूरतन। तो अब उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो है ना बशर्ते कुदरत नसीहत कर देना चाहिए, ठीक है, बशर्ते कुदरत उनको नसीहत यानी उन गलत लोगों को जो है वो नसीहत कर देना है, शायद वो ताने देने वाले भी इन खराफात से एहतियात करने लगे। शायद वो ताने देने वाले यानी जो अल्लाह ताला की आयात में एतराज वगैरह करते हैं ना, तो इसकी नसीहत से उम्मीद है कि वो लोग भी एहतियात करने लगेंगे, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई शख्स ये कहे कि भाई मैं काफिरों के साथ जो है ना वो उठता बैठता तो हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं उनके पास होता हूं तो वो अल्लाह ताला की आयात में एतराज नहीं कर रहे होते, या वो गुनाह के काम नहीं कर रहे होते, या वो गुनाह की बातें नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो चूंकि वो गुनाह की बातें नहीं कर रहे हैं, वो गुनाह के काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए फिर जायज है ना कि मैं उनके साथ उठना बैठना करूं, ठीक है, क्योंकि वो गुनाह की बातें तो नहीं कर रहे, या वो अल्लाह की आयात में एतराज तो नहीं कर रहे, ये दोनों एक ही चीज है, अल्लाह की आयात में एतराज करना या गुनाह की बातें करना, ये दोनों एक ही चीज, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जो है वो उसने दोस्ती रखी हुई है किसी के साथ, ठीक है, अब वो दो दोस्त है ना वो दुनियादार किस्म के लोग हैं जो कि गुनाहगारी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, फिल्में देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं, फोहश कलाम करते हैं, बेहूदगी की बेकार किस्म की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये उनकी कंपनी में जाता है तो उस वक्त वो ये काम नहीं कर रहे होते, उस वक्त जो है ना वो ये काम नहीं करते हैं, यानी म्यूजिक नहीं सुनते हैं उस वक्त जब ये जाता है उनकी कंपनी में, और फिल्मों की बातें नहीं करते हैं और दूसरे गुनाहों की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, तो अब ये समझे कि चूंकि जब मैं उनकी कंपनी में जाता हूं तो उस वक्त वो ये वाले काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मेरा उनकी कंपनी में जाना जो है वो बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है कि बस उनकी कंपनी में चले जाएं और उनके साथ जो है वो फिर चिल करें, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जो है वो आउटिंग कर लें, ठीक है, क्यों? इसलिए कि भाई आपकी कंपनी जब होती, जब आप उनके पास जाते हैं ना तो उस वक्त वो गुनाह के काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अच्छा है फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें तो कोई मसला नहीं। तो क्या ये अजम्पशन, क्या ये कंक्लूजन ये ठीक है? ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, हम अब तक जो हमने तर्जुमा पढ़ा है या तो अब तक जो हमने खुलासे तफसीर में पढ़ा है ना, उसकी लाइट, उसकी रोशनी में इसका क्या जवाब होगा? ठीक है, कि ये बहुत मुश्किल सा एक सवाल है, इस वजह से हम आप नहीं छोड़ते, मैं फिर आपको पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएंगे क्या ना। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह का हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि जब वो लोग बुरा काम कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी मजलिस में ना जाओ, लेकिन जिस वक्त वो बुरा काम नहीं कर रहे हैं तब उनकी मजलिस में चले जाओ। जैसे कि इन अल्फाज से ऐसा लग रहा है ना कि हत्ता यखूदू फी हदीस गैरी, जब वो बुरे काम को छोड़ करके किसी नॉर्मल काम में लग जाए तब उनकी मजलिस में जाने में कोई हर्ज नहीं है, इन अल्फाज से ऐसे ही लग रहा है ना, ठीक है, कि जब वो बुरा काम करना छोड़ दें, आयात में एतराज करना छोड़ दें, तब उनकी मजलिस में जाने में कोई हर्ज नहीं है। इन अल्फाज तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आगे के अल्फाज से हमें क्या पता चल रहा है कि आपने आप डिस्प्ले नहीं किया हुआ अभी। वमा अललजीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून, ठीक है? कि जो लोग खुद बच रहे हैं गुनाह के कामों से और आयात में एतराज करने से जो लोग खुद बच रहे हैं, तो उनके जिम्मे क्या चीज है, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है? जी जल्दी से बताएं क्या जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर? नसीहत करना, ठीक है? नसीहत करना, जिक्रा, उनके ऊपर नसीहत करने की जिम्मेदारी आती है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बुरे लोगों की मजलिस है, अब आप उस मजलिस के अंदर अगर जा रहे हैं ना, क्योंकि जिस वक्त आप जाते हैं उस वक्त वो बुरा काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अब आपके जिम्मे क्या चीज है कि आप उनकी मजलिस में जा करके उनको नसीहत करें, आप उनकी मजलिस में जा करके उनको नसीहत करें, ठीक है? ये नहीं है कि अब आप उनकी मजलिस में जाएं और उनके साथ हैंग आउट करें, उनके साथ चिल करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ आउटिंग करें, उनके साथ डिनर पे चले जाएं, उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएं, उनके साथ और जो भी आपको पान खाने के लिए चले जाएं, ठीक है? या उनके साथ आप जो है वो साइट सीइंग के लिए चले जाएं? नहीं, आप उनके साथ अगर हैं ना, तो अब आपको उनके ऊपर, आपको उनके साथ रह करके उनको नसीहत भी करनी, ठीक है? आपको उनके साथ रह करके उनको नसीहत भी करनी। क्यों? इसलिए कि आपको पता है ना कि वो दुनियादार लोग हैं, वो दीन से दूर लोग हैं, वो गाफिल लोग हैं, वो जाकिर लोग नहीं हैं। आपको ये बात पता है ना कि वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी के अंदर, जो कि आपके सामने के अलावा जो उनकी जिंदगी है, तो उसमें तो वो गुनाहों में पड़े हुए हैं ना, उसमें तो वो म्यूजिक सुनते हैं ना, उसके अंदर तो वो फिल्में देखते हैं ना, उसके अंदर तो वो गालियां देते हैं ना, उसके अंदर तो वो दूसरे बुरे काम करते हैं ना, आपको मालूम है ना, ठीक है? तो अब आप जब उनके साथ हैंग आउट करेंगे, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि आप उनको नसीहत करेंगे, ठीक है ना? आप उनको नसीहत करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि बस वो मेरे सामने तो नहीं गलत काम कर रहे, तो इस वजह से इट्स ओके कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूं, इट्स ओके, क्योंकि मेरे सामने तो वो बुरा काम नहीं करते हैं ना। नहीं, इट्स नॉट ओके, ठीक है? इट्स नॉट ओके। तो अब अगर आप उनके पास जा रहे हैं, तो आपको नसीहत करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको नसीहत करनी पड़ेगी, वरना क्या करना होगा आपको? वरना सिर्फ बकदरे जरूरत आप उनके पास जा सकते हैं। और बकदरे जरूरत का मतलब क्या होता है भाई? कि जब जरूरत पूरी हो गई, तो फिर क्या करना होता है? फिर वापस आ जाना होता है। जरूरत पूरी हो गई, अब वापस आ जाना होता है, अब उनके साथ ही रह सकते हैं। बकदरे जरूरत का यही मतलब होता है, ठीक है? इसकी एक इंतहाई मिसाल आपको क्या दे सकते हैं कि बाथरूम जाते हैं ना, बाथरूम, तो बाथरूम क्यों जाते हैं? जरूरत पूरी करने के लिए, जरूरत से फारिग होने के लिए। तो अब जब जरूरत पूरी हो गई, तो उसके बाद भी उधर ही बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो अल्लाह माफ करे दुनियादारी की जिंदगी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में नहीं किया, लेकिन उन लोगों के साथ उठना बैठना होता था, अल्लाह माफ करे उस जमाने को, अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त मौत नहीं आ गई, ठीक है? जब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता था, अगर उसी वक्त मौत आ जाती, तो अल्लाह ताला क्या मुंह दिखाते, अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया कि अपने नेक बंदों के साथ ताल्लुक अता फरमा दिया। वरना उस जमाने में ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना होता था जो कि नजासत की जगह पर मैगजीन्स रखते थे, राइट? और वो बैठे हुए वहां पे मैगजीन्स पढ़े होते थे, बुक्स पढ़े होते थे, बाथरूम के अंदर बैठ करके बुक्स और मैगजीन्स पढ़ते थे, ठीक है? और जो है वो या तो फोन लेके जा रहे हैं और नजासत के साथ साथ जो है वो किसी से जो है वो फोन के ऊपर लंबी लंबी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है ना, दीन ना हो या रहनुमाई ना हो, इंसान दूर भागता है जो रहनुमाई से, तो उसकी जिंदगी में ये भी होता है ना, कितनी गलीज हरकत है ये, लेकिन ऐसा भी होता है, ठीक है? तो जिस तरह बाथरूम में जाते हैं जरूरत के लिए ना, फिर जरूरत जब पूरी हो जाती है तो वापस आ जाते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि अब मैं बाथरूम चला गया हूं तो अब मैं बिला जरूरत में वहां पे बैठी रहूंगी, बिला जरूरत में वहां पे बैठा रहूंगी, नहीं, जरूरत पूरी होगी खत्म, वापस आउट, ठीक है? तो ये है ऐसे लोगों के साथ जो कि अल्लाह की आयात के अंदर अपनी दीगर जिंदगी में नुक्स निकालते हैं, उनको काबिले अमल नहीं समझते हैं। भाई गुनाह क्यों करता है कोई इंसान, गुनाहगारी की जिंदगी क्यों गुजारता है? इसीलिए ना, क्योंकि वो अल्लाह की जो अहकामात हैं उनको अहम नहीं समझता, उनको अहम नहीं समझता, ठीक है? तो वो शख्स जो है बेशक आपकी मौजूदगी में गुनाह ना कर रहा हो, लेकिन जो अल्लाह के हुक्मों को गैर अहम समझना है वो तो उससे जुदा तो नहीं होता ना, ये कैफियत तो उससे जुदा नहीं होती ना, ये फिक्र ये सोच तो उससे जुदा नहीं होती ना, आपकी कंपनी के अंदर ये सोच ये फिक्र तो उसके अंदर मौजूद रहती है ना, चाहे वो आपकी कंपनी में आकर के खामोश रहता हो, लेकिन फिर भी उसके जहन में तो यही सोच चल रही है कि अल्लाह के हुक्मों की कोई अहमियत नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनको तोड़ देना, ठीक है? तो आप ऐसे शख्स जो है, ऐसे लोगों की कंपनी में आप हैंग आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना? जरूरत के लिए जाना पड़ रहा है तो फिर जरूरत पूरी करो, निकलो वहां से। बात समझ यार, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो फरमाते हैं कि एहतियात रखते हैं, अच्छा, उन पर जो लोग एहतियात रखते हैं तो उन पर इन ताइनीन व मुकज्जिबीन, या ये ताला देने वाले और जो तकजीब करने वाले जो लोग हैं उनकी बाज़पुरस और गुनाह तान का कोई असर नहीं पहुंचेगा, यानी जरूरतन जो लोग उनके करीब जा रहे हैं उनके ऊपर असर नहीं होगा। व लेकिन उनके जिम्मे बशर्ते कुदरत नसीहत कर देना है, ठीक है? यानी जितनी कुदरत हो उतनी नसीहत करना। क्या मतलब है इसका, बशर्ते कुदरत नसीहत करना? इसका मतलब ये है कि नसीहत की हर वक्त फिक्र कर रखना, ठीक है ना? कि भाई मैं उनके साथ जो अब हैंग आउट कर रहा हूं तो मुझे तो नसीहत करनी, अब अगर जुबान से नसीहत कर सकते हो जुबान से नसीहत करो, और अगर उस वक्त जुबान से नसीहत नहीं कर सकते तो दिल में फिक्र तो रखो ना नसीहत करने की, कि मैंने नसीहत करनी है, यानी मैंने इनके साथ जो है वो एंजॉय नहीं करना है, मैं तो यहां पर नसीहत करने के लिए इनके पास आया हूं, मैं इनके साथ जो वक्त स्पेंड कर रहा हूं ना, टाइम स्पेंड कर रहा हूं ना, वो मैं नसीहत करने की नीयत से टाइम स्पेंड कर रहा हूं, एंजॉय करने की नीयत से टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, राइट? मैं इन लोगों के साथ एंजॉय करने की नीयत से टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, मैं इन लोगों के साथ नसीहत करने की नीयत से टाइम स्पेंड कर रहा हूं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं नसीहत करता भी हूं, ठीक है? तो ये एक रियल लाइफ सिनारियो है, इसके अंदर बहुत से लोग मुब्तला होते हैं, और बहुत दीनदार लोग जो कि नेक बनना चाहते हैं और नेकी को सीखना चाहते हैं, और बड़ी जो है वो उन्होंने अपने तौर पर अपने सो कॉल्ड अपना इल्म भी हासिल किया हुआ होता है, तो वो समझते हैं कि जो गुनाहगार लोग हैं तो एज लॉन्ग एज मेरी कंपनी में वो गुनाह नहीं करते तो देन इट्स ओके कि मैं उनके साथ चिल आउट कर रहा हूँ, हैंग आउट कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसका पुरानी जवाब यहाँ पर अल्लाह ताला ने दिलवा दिया है, ठीक है, कि नहीं, इट्स नॉट ओके। अच्छा, तो फरमाते हैं कि नसीहत कर देना है, शायद वो ताने देने वाले भी इन खराफात से एहतियात करने लगे, ख्वाह कबूल इस्लाम करके ख्वाह उनके लिहाज से, ठीक है? कि वो फिर या तो कबूल इस्लाम कर लें, क्योंकि उस जमाने के अंदर तो काफिर ही होते थे ना ऐसे लोग, तो वो मुसलमान हो जाएं। लेकिन हमारे जमाने में बहुत सारे सो कॉल्ड मुसलमान भी, जो कि नबी अलैहि सल्लम को अल्लाह का रसूल भी समझते हैं, वो गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं। तो नसीहत करते रहना ताकि वो गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दें, ठीक है? शायद अल्लाह ताला ने उनके लिए हमारी नसीहत के वास्ते से हिदायत रखी हो और वो उसको छोड़ दें। अच्छा, आगे फरमाते हैं, और कुछ मजलिस तकजीब की तख्सीस नहीं, यानी ऐसी कोई मजलिस जहां पे कि तकजीब होती हो उसी की खसूसियत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहे जिन्होंने अपने इस दीन को, जिसका मानना उनके जिम्मे फर्ज था, यानी इस्लाम को, लहव व लाभ बना रखा, ठीक है? यानी आगे मजीद इसकी तख्सीस हो गई कि जो लोग यानी अल्लाह के दीन के साथ ऐसा मजहक मजहक का खेज, ठीक है, कि कहते भी हैं कि हाँ ये दीन है, और जो है वो उस पर अमल की कोशिश भी नहीं करते, और जो गुनाह कर रहे होते हैं उसके ऊपर नादम और शर्मिंदा भी नहीं हो रहे होते, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहे। बहुत सारी खवातीन भी है ना, उनको दावतें खाने का बहुत शौक होता है, दावतें खाने का बहुत शौक होता है, ठीक है? तो वो दावतें खाना उनके लिए, और बैठ करके गॉसिप्स करना, और बैठ करके जो है वो लंबी लंबी बातें करना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगरचे के वो अपनी पर्सनल जिंदगी में बड़ी दीनदार होती हैं, बड़ी तहज्जुद गुजार होती हैं, बड़ी आलमा कोर्स करने वाली होती हैं, बड़ी जो है वो दरस कुरान में भी शामिल होने वाली और मजलिस में भी आने वाली है वो भी, लेकिन वो इन पार्टीज को नहीं छोड़ सकती, ठीक है? जिन पार्टीज के अंदर जो फिस्क व फुजूर खुल करके जो गुनाह करने वाले लोग हैं वो पार्टीज कर रहे होते हैं, तो अब ये जो दीनदार आंटी हैं ये उन पार्टीज को नहीं छोड़ सकती, वो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, नहीं करती हैं वो, तो वो दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहती हैं, ठीक है? वो फिस्क व फुजूर की पार्टीज को और जो है वो दीनी मजालिस को साथ साथ लेके चलना चाहती हैं, ठीक है? और एहसान करती हैं इस तरीके से कि यानी दीनी मजालिस के साथ साथ जो है वो उनको लेके चलना है, क्योंकि उनके लिए ये पार्टी करना और ये जो है ना वो यानी सोशलाइज करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोशलाइज करना, ठीक है ना? अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की रजा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सेकंड नंबर पे होती है, थर्ड नंबर पे होती है, ठीक है? तो अल्लाह का हुक्म क्या है, छोड़ दो उनको, एंड डोंट लुक फॉर पार्टीज। अब उधर की पार्टी छोड़ी है तो अब दीन में पार्टी चाहिए, क्योंकि पार्टी अहम थी, अल्लाह का हुक्म अहम नहीं था, पार्टी अहम थी, तो अब दुनियादारों की पार्टी छोड़ी है तो अब दीनदारों की पार्टी चाहिए। क्यों भाई, दीनदारों की पार्टी क्यों चाहिए? अल्लाह का हुक्म नहीं चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए, दुनिया में पार्टियां चाहिए ना, ठीक है? तो प्रायोरिटीज मेस्ड अप होती हैं कंप्लीटली, ठीक है? तो इस वजह से नहीं, पार्टी चाहिए नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म यह है छोड़ दो पार्टी को, छोड़ दो ऐसे लोगों को। किसकी खातिर? दीनी पार्टी की खातिर नहीं, जन्नत की खातिर, ठीक है? अल्लाह की रजा की खातिर, ठीक है? तो ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहे, यानी ऐसी पार्टियों को छोड़ दें जिन्होंने अपने इस दीन को, जिसका मानना उनके जिम्मे फर्ज था, यानी इस्लाम को, लहव व लाग बना रखा। छोड़ दो ऐसी पार्टीज, छोड़ दो ऐसी कंपनीज को, ठीक है, जो उसके साथ तमस्खुर करते हैं, और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है कि दुनिया में उनको जो माल पैसा मिल गया है, अच्छी गाड़ियां मिल गई हैं, अच्छे घर मिल गए हैं, तो वो इस गुमान में हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो गया है, और मरने के बाद अगली जिंदगी में भी हमें ऐसी अच्छी गाड़ियां भी मिलेंगी, ऐसे अच्छे घर भी मिलेंगे, ऐसे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, और ऐसी अच्छी अपनी ख्वाहिशात हमारी कयामत में भी पूरी होंगी। ये खेल तमाशा बनाया हुआ है तुमने, ठीक है? ये तुमने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। ये दीन जो है ना, ये नहीं कहता कि दुनिया में अगर तुम्हें ये सारी लज्जतें मिली हुई हैं तो आखिरत में भी तुम्हें ये लज्जतें मिलेंगी। नहीं, ये दीन नहीं कहता, ये दीन नहीं है, ये तुमने बनाया हुआ अपना दीन। ये कुरान और सुन्नत वाला दीन नहीं है। कुरान और सुन्नत वाला दीन तो है कि अगर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करोगे अल्लाह की रजा की नीयत के साथ, तब आखिरत में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस दीन को जिसका मानना उनके जिम्मे फर्ज था, यानी इस्लाम को लहव व लाग बना रखा है। ठीक है, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे इस्लाम को रखना भी इस्लाम को लहव व लाग बना रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जिंदगी का मकसद होता है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, वो थर्ड प्रायोरिटी पे नहीं होता। थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर तो खेल कूद होता है। हमने दीन को थर्ड प्रायोरिटी पे या सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, दैट मीन्स कि हमने दीन को खेलकूद बनाया। ठीक है ना, तो ये किसी दूसरे दौर के लोगों के लिए ये आयात नहीं नाजिल हुई या हमारे लिए नाजिल हुई। हम पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं कि दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? 1400 साल पहले के लोगों के किस्से कहानियां पढ़ने के लिए तो नहीं ये आयात पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने भी दीन को सेकंड प्रायोरिटी पे या थर्ड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने भी लाभ व लाभ बनाया हुआ है, क्योंकि मकसद जिंदगी कभी भी सेकेंड प्रायोरिटी पे नहीं हो सकता। मकसद है जिंदगी जो भी है, जिसका पैसे कमाना मकसद है जिंदगी है, तो वो नंबर वन प्रायोरिटी होगी उसकी। जिसका दुनिया की इज्जत हासिल करना मकसद है जिंदगी है, वो उसका नंबर वन प्रायोरिटी होगा। ठीक है, और जिसकी अल्लाह को राजी करना मकसद है जिंदगी है, अल्लाह को राजी करना उसकी नंबर वन प्रायोरिटी। नंबर टू प्रायोरिटी कैसे हो सकती? तो दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, क्योंकि उसको उन्होंने अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बनाया हुआ है, या उसको अपना मकसद है जिंदगी बनाया हुआ है कि उसकी लज्जात में मशगूल है और आखिरत के मुनकर है। इसीलिए इस तमस्कुर का अंजाम नजर नहीं आता उनको, क्योंकि आखिरत का इनकार करते हैं तो उनका अंजाम ही नजर नहीं आता कि इसके साथ क्या होने वाला है हमारे साथ। और किनारा कशी व तरक ताल्लुकात के साथ ऐसे लोगों को इस कुरान के जरिए से, जिससे ये तमस्खुर कर रहे हैं, यानी ये जो उनको आपने उनसे दूर रहना है और तरक ताल्लुकात उनके साथ करनी है, ऐसे लोगों को इस कुरान के जरिए से, जिससे ये तमस्खुर कर रहे हैं, नसीहत भी करता रहे। ठीक है, यानी अपना काम है नसीहत करना। ठीक है, और जाहिर है वो नसीहत सीख करके, कुरान को सीखेंगे तभी आगे कुरान से नसीहत करेंगे ना। ठीक है, तो सीख करके आगे पहुंचाना, सीख करके आगे पहुंचाना, बलावुल मुबीन। तो ये तुम नसीहत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये मत कहो कि अच्छा वो तो लाभ में पड़े हुए लोग थे और वो जो है ना वो तो मान के नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से मैं नसीहत करना छोड़ दूं उनको। नहीं, नसीहत की फिक्र तो तुम करते रहो, जैसे मौका मिले, जहां मौका मिले, अच्छा बना बना करके अपनी नसीहत के तरीके को इम्प्रोवाइज करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, बेहतर से बेहतर के तरीके की तलाश में रहो, नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप करने का मतलब ये होता है कि बस छोड़ दिया। ठीक है, और वो इंसान कब छोड़ देता है? जब उसको उम्मीद खत्म हो जाती है तब तो वो छोड़ देता है काम। कब छोड़ता है किसी काम को? जब उसको उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अब वो उस काम को छोड़ देता है। नहीं, उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा काम नसीहत करना है, तुम्हारा काम हिदायत देना नहीं है। हिदायत देने का काम अल्लाह का है। ठीक है, तो अल्लाह तो किसी वक्त भी हिदायत दे सकता है, अल्लाह तो किसी को भी हिदायत दे सकता है। ठीक है, तो अपना काम करो भाई, हिदायत का काम अपने जिम्मे क्यों ले करके बैठे हुए हो? जो अल्लाह का करना का काम है वो अल्लाह को करने दो, तुम्हारे करने का काम है तुम करो। ठीक है, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमने तो टाइम जाया कर उनको नसीहत करके, क्या मतलब टाइम जाया कर दिया? अगर अल्लाह की खातिर आपने नसीहत करी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है, कैसे टाइम जाया हो सकता है? कैसे आपका टाइम जाया हो सकता है? आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, आपका टाइम वेस्ट हो गया? हाउ कम? अगर वो हिदायत पर नहीं आया तो इसका क्या ताल्लुक है अल्लाह के हुक्म के साथ? अल्लाह का हुक्म तो था ही नहीं कि तुम उनको हिदायत पे लेकर आओ, तुम उनको हिदायत पे लेकर के आओ। तुमसे पूछा जाएगा कितने बंदों को तुमने हिदायत के ऊपर लेकर के आए, ये तो कहीं भी नहीं है भाई। तो इस कुरान के जरिए से जिससे तमस्कुर कर रहे हैं, तुम नसीहत भी करते रहो ताकि कोई शख्स अपने किरदार बद के सबब अजाब में इस तरह ना फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह ना उसका मददगार हो और ना सिफारिशी हो। क्या मतलब? खैरख्वाही की नीयत के साथ कि वो अजाब से बच जाए, वो अजाब से बच जाए, क्योंकि अगर वो अल्लाह के अजाब में फंस गया ना तो अब उसका कोई मदद करने वाला नहीं होगा, ना कोई उसका सिफारिशी होगा। तो ये दिल में एक कैफियत होना भी जरूरी है ना, दाई के लिए, बुलाने वाले के लिए खैरख्वाही की नीयत होना ये शर्त है। ठीक है, तो नसीहत करना इसलिए नहीं कि बस चिस्पा कर देनी है नसीहत किसी के ऊपर, अपने सर से उतार देनी है नसीहत, बल्कि इस खैरख्वाही के जज्बे के साथ कि अगर वो गुनाह से ना बचा, अगर वो दीन की तरफ नहीं आया, अगर जो है वो उसने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा, तो वो नुकसान पाने वालों में से हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे कवर हो गई इन्हीं आयात के अंदर कि खैरख्वाही कितनी अहम चीज है, कितनी जरूरी चीज है। और ये कैफियत हो कि अगर बिलफर्ज दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले, यानी उसकी ये कैफियत हो जाएगी कि अगर वो दुनिया भर का मुआवजा भी दे डालेगा ना कि उसको खर्च करके अजाब से बच जाए, तब भी उससे नहीं लिया जाएगा। यानी एक दाई, दावत देने वाले के दिल में खुद ये यकीन होना कि मैं जिस चीज की तरफ उसको दावत दे रहा हूं, इस चीज के अलावा खैर है ही नहीं किसी चीज के अंदर, इस चीज के अलावा निजात है ही नहीं, और इसके ऊपर अमल ना करने की वजह से अगर वो मुसीबत में पड़ गया तो उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं, उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इस रास्ते के ऊपर आने के जिस रास्ते की तरफ मैं उसको बुला रहा हूं। ठीक है, तो ये दाई के दिल की कैफियत है, इनके बगैर दावत दावत नहीं होती बल्कि कुछ और होता है। अच्छा, मैंने क्या लिखा, बल्कि टाइम भी क्लास को हो गया मुकम्मल, तो उसे पढ़ के शायद मुकम्मल कर क्लास। उन्होंने लिखा कि किसी भी जरिए से हिदायत मिल सकती है, जैसे आपने फरमाया था कि सलमान रुश्दी ने शैतानी किताब लिखी थी तो लोगों ने कहा कि हम इस्लाम को भी तो पढ़ें कि वो कैसा दीन है कि उसके पीछे सब पड़े हैं, इस तरह भी बहुत लोग मुसलमान हुए थे। जी, अल्लाह ताला तो किसी भी वास्ते से हिदायत दे सकते हैं ना, तो ये अल्लाह का करने का काम है, वो किसी भी जरिए को इस्तेमाल कर ले। अब ये जो सितंबर 11 का जो वाकया हुआ था अमेरिका के अंदर, 11वीं शरीफ भी जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी 9/11, वो जो इतने हजार लोग जो हैं वो मर गए बिल्डिंग्स के गिरने की वजह से, तो अब उसकी वजह से जहां इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे लोग हुए, वहीं बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल भी हुए उसके जरिए से। ठीक है, कि भाई सारी दुनिया के अंदर जो है वो टेररिस्ट 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 का जो है वो शोर मच गया कि ये मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, तो अब कितने गैर मुस्लिम थे जिन्होंने कहा अच्छा मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, तो चलो टेररिस्ट तो हमें पता है क्या चीज होती है, लेकिन मुसलमान क्या चीज होती है, उन्होंने जो है वो इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा मुसलमान तो वो होता है जो इस्लाम के ऊपर अमल करता है या इस्लाम लाने वाला होता है, तो अब इस्लाम क्या चीज होती है, चलो हम इस्लाम को पढ़ते हैं। अब जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमा दी। तो अल्लाह ताला तो किसी भी जरिए को इस्तेमाल कर सकता है ना हिदायत देने के लिए, तो ये तो अल्लाह के करने का काम है, हमारे करने का काम है, हम नसीहत करते रहें। अच्छा, कितना वक्त हो गया है, 44 हो गया, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर हम रोकते हैं, जैसे आप जो है वो निशान लगा दे। अच्छा, एक और यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, किसी को नसीहत करे तो वो वहां से कह दे मुझे वाज़ नसीहत की जरूरत नहीं है, ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरा दिल उस गुनाह को छोड़ने का मान ही नहीं रहा, तो उस इंसान को क्या कहेंगे?
यानी आप उसको नसीहत कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे ये बात तो पता है कि जो तुम मुझे बता रही हो, लेकिन इस गुनाह को छोड़ने पर मैं आमादा नहीं हो रहा हूं, मेरा दिल आमादा नहीं हो रहा है। तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को नसीहत करते रहेंगे। ठीक है, आप नसीहत का कोई और अंदाज इख्तियार कर लें, आप नसीहत के लिए कोई और ऐसी बात लेकर के आए जिससे कि शायद वो ये बात तस्लीम कर ले आपकी बात को। ठीक है, तो कुरान की कोई आयत लेकर के आए, कोई वाकया लेकर के आए, कोई जो है वो बयान लेकर के आए, कोई जो है वो किताब का कोई एक्सर्प्ट लेकर के आए, जैसे भी कुछ लेकर के आए, आप उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से बात को समझाने की कोशिश करती रहें। बाकी वो उसका दिल गुनाह को छोड़ने पर मायल हो या ना हो, ये अल्लाह के जिम्मे है, ये आपके जिम्मे नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करती रहे। ठीक है, या अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे उससे बात करूं, तो अब आप अल्लाह से दुआ करती रहे कि अल्लाह कोई चीज मेरे ऊपर खोल दीजिए, अल्लाह कोई ऐसा मौका बना दीजिए, या अल्लाह आप उसको हिदायत दे दीजिए। मेरे समझाने से उसको हिदायत आप नहीं दे रहे हैं, किसी और के समझाने से उसको हिदायत दे दीजिए, बस अल्लाह उसको हिदायत दे दीजिए, आप उसके लिए दुआ करती हैं। ठीक है, जब अल्लाह ताला आपके सामने कोई चीज खोले, तो फिर आप जो है वो उसको जाकर के उस तरीके से नसीहत करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके करने का काम है, ये हमारे करने का काम है। ठीक है, आखिर दुआ ना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।